लक्ष्मण जी के प्रति मेरी श्रद्धा तो थी, अब चूंकि आपने यह कहा कि तुम लक्ष्मण की अपेक्षा मुझे दुगने प्रिय हो, तब से लक्ष्मण जी के प्रति मेरी श्रद्धा सौगुनी बढ़ गई। क्या मतलब? मतलब यह है प्रभु, लक्ष्मण जी आपके साथ, जन्म से आपके साथ, और उनकी उपस्थिति में आप मुझसे कहते हैं कि मैं लक्ष्मण से दुगना प्रिय हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो मैंने यही लिया था महाराज कि बोलचाल की भाषा में हम किसी से कह देते हैं कि तुम मुझे प्राण से बढ़कर के प्यारे हो, तो प्राण से बढ़कर के कोई प्यारा नहीं होता, वह तो केवल कहने का ढंग होता है, कहने की शैली होती है। तो इसी प्रकार मैंने समझ लिया कि आपके प्राण तो लक्ष्मण जी हैं, वे ही आपके प्राण हैं, और आपने मुझसे कहा कि तुम लक्ष्मण की अपेक्षा दुगने प्रिय हो, तब से मैं समझ गया कि लक्ष्मण जी ही आपके प्राण हैं, जिनकी उपस्थिति में आप कुछ भी कहेंगे तो लक्ष्मण जी बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए मेरी अनगिनत श्रद्धा बढ़ गई। लक्ष्मण जी के चरणों में यह विलक्षण सत्य जीवन का, निरभिमानिता का, ऐसे हनुमान जी हैं, परम संत हनुमंत हैं। और ये क्या कहते हैं, जब प्रभु से यह मिलन हो गया, यह बातचीत हो गई, तब इसके बाद उन्हें तो अपने उस मिशन का बिल्कुल ध्यान बना हुआ है, सुग्रीव से मिलाना है प्रभु को, जीव के पास प्रभु को ले जाना है। तो वे क्या कहते हैं, नाथ सैन पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई, तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जान तेहि अभय करी जय। कहा कि महाराज इस पर्वत पर कपिपति रहते हैं, उनका नाम सुग्रीव है, वे आपके दास हैं, उनके साथ चल करके मैत्री कर लीजिए और दीन जान करके आप अभय प्रदान कीजिए। अब बड़ी विचित्र बात है, अब ये जो हैं सुग्रीव, ये कपिपति कब से हो गए? उनको तो खदेड़ दिया गया है राजपाट से, और ये तो पर्वत में भाग करके छिपे हुए हैं, बाली से किसी प्रकार अपनी रक्षा करते हुए। और यह जो कपिपति कहा कि ये कपियों के राजा हैं, तो हनुमान जी तो चतुर हैं, वाक विन्यास में चतुर हैं, वे तो बुद्धिमों में अत्यंत बुद्धिशाली हैं, यह भी हम पढ़ते हैं, उनके समान वाक चातुरी और किसी की नहीं है। जैसी वाक चातुरी हनुमान जी की है, वे मानो प्रभु की भाषा में ही कहते हैं, प्रभु आपको स्मरण है जब आपको वनवास मिला और आप कौशल्या माता से अनुमति लेने गए, और मां ने कहा कि बेटा बहुत देर हो जाएगी, आज तो तुझे युवराज पद मिलने वाला है, कुछ कलेवा कर ले, मालूम नहीं कब जाकर के तुझे खाने को मिलेगा। तो आपने क्या कहा था स्मरण है? क्या कहा था मैंने हनुमान? आपने कहा था कि मां तुमको तो और अधिक हर्षित होना चाहिए, पिताजी मुझे युवराज बनाना चाहते थे पर आज उन्होंने मुझे राजा बना दिया है, पिता दीन मुहि कानन राजू, उन्होंने वन का राजा मुझे बना दिया है, मां मेरी पदोन्नति हो गई है। तो जिस अर्थ में आप वन के राजा हैं, उसी अर्थ में वे कपियों के भी राजा हैं, तो इसीलिए नाथ आप दोनों का जो मेल होगा बड़ा सुंदर होगा, आप वन के राजा अपनी परिभाषा के अनुसार, और उसी परिभाषा के अनुसार मैं सुग्रीव को कपियों का राजा कहता हूं, आप चल करके उनके साथ मित्रता कीजिए। और वे दास हैं, कैसे दास हैं, कभी तो सेवा नहीं की, पर ये दास कैसे हैं? संसार में हमें दास की आवश्यकता होती है जो हमारी सेवा करें, और प्रभु ऐसे हैं, वे दास इसलिए चाहते हैं कि वे दास की सेवा करें, यह विलक्षणता है। यहां पर कहा गया कि को साहिब सेवा कहीं निवाजी, आप समाज साज सब साजी, भरत ही कह रहे हैं आपके समान प्रभु और कौन हो सकता है जो स्वामी बने। आप तो सेवक को बुलाते हैं और आप उसकी सेवा करते हैं, आपको सेवक चाहिए केवल सेवा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, आप तो ऐसे स्वामी हैं जो बुला बुला करके सेवकों की सेवा किया करते हैं। तो हनुमान जी का तात्पर्य यही है कि आपको तो सेवक अपनी सेवा के लिए नहीं चाहिए, आप तो सेवक इसीलिए बुलाते हैं ताकि आप उसकी सेवा कर सकें, तो इससे बढ़कर के सेवक सुग्रीव आपको नहीं मिलेगा, आप जितनी भी सेवा करेंगे सुग्रीव लेगा। इसलिए महाराज मैं कहता हूं कि है तब दास व सुग्रीव, दास तब आई, वह आपका दास है, और तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, चलिए आप उसके साथ मैत्री कर लीजिए। क्योंकि लगा यदि सुग्रीव मैत्री करें तो हो सकता है सुग्रीव तो जीव है मैत्री को भुला दें, जीव मित्रता भी करता है, फिर जिससे मित्रता करता है उससे शत्रुता भी कर लेता है, मोल लेता है बैर। ये तो जीवन में दिखाई देता है, दो मित्र हैं, थोड़ा सा कारण बना कि दोनों में शत्रुता हो गई, और ऐसी शत्रुता हो गई कि एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते। तो भगवान जी ने सोचा कि मैं सुग्रीव जी से कहूं कि चलो प्रभु के साथ मित्रता कर लो, कर तो लेंगे, पर कितने दिनों तक उनकी मित्रता टिकेगी पता नहीं। प्रभु यदि मित्रता करेंगे तो वे मित्रता का निर्वाह करेंगे, इसीलिए कहते हैं प्रभु चलिए आप मित्रता कर लीजिए, ऐसे नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजिए और दीन जान करके आप अभय कर दीजिए। प्रभु एक बार जिसे अपना लेते हैं उसे अभय ही तो कर देते हैं, यही तो कहा गया। यहां तक कि जो उनके पास पहुंचा, प्रभु के चरणों में कांटे पहुंचे, जिस समय वे कंटकाकीर्ण पथ पर चल रहे थे उन कांटों को भी प्रभु ने नहीं निकाला, अभय कर दिया, अपने से दूर नहीं किया। हम देखते हैं कवितावली में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, मन पथ पर चले जा रहे हैं, प्यास तो प्रभु को लगी है, सीता जी को भी लगी है, लक्ष्मण जी ने देखा कि प्यास तो सभी को लगी है, पर न प्रभु कहते हैं कि प्यास लगी है, न सीता जी कहती हैं कि प्यास लगी है, तो लक्ष्मण जी ने ही कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं जल पी करके आता हूं, और सोचा कि जल मैं साथ में लेता आऊंगा। तब जानकी जी कहती है कि भैया तुम जा रहे हो तो तुम जल लेकर के आना। अब जिस समय चले गए लक्ष्मण जी जल लाने के लिए, तब क्या कहती हैं, तब भी प्रभु धीरे धीरे चल रहे हैं। जानकी जी ने कहा कि थोड़ी देर रुक तो लीजिए, जल को गए लखन है लरिका, परी खोपी छाह घड़ी को बैठारी, इस छाह में थोड़ी देर अपेक्षा कर लीजिए नाथ। लक्ष्मण लड़के हैं, बालक हैं, जल लाने के लिए गए हैं, आप रुकेंगे तो वे भी आकर के थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। और तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक कार्य, प्रभु बैठ गए, देखा प्रिया जी थक गई हैं, तब क्या किया जाए, एक कांटा लेकर के पैर में गड़े हुए कांटे को निकाल रहे हैं, विलंब हो रहा है, कांटा निकलता ही नहीं है। तो सीता जी ने कहा कि आपके द्वारा कांटा न निकलता हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं निकाल देती हूँ। प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, वह तो मर्यादा भंग हो जाएगी, इसमें कौन सी मर्यादा भंग होगी। प्रभु ने हंस करके कहा कि सीते तुम साक्षात भक्ति हो, तुम्हारा काम है मेरे पास पहुंचाना, यह काम नहीं है कि मेरे पास जो पहुंचा हुआ है उसको तुम मुझसे दूर कर दो, इस कांटे को निकालने का काम तुम्हारा नहीं है, या मैं ही कर लूंगा या मुझे ही निकालने दो। सीता जी समझ गई विलंब हो रहा है, और जब विलंब होते देखा कांटा निकलता ही नहीं है तो कहा महाराज ये कांटा तो निकल नहीं रहा है, मैं समझ गई। क्या समझ गई हो, यह करुणा और न्याय का झगड़ा है। क्या मतलब कि महाराज आपके जो हाथ हैं उसमें तो धनुष बाण रहते हैं, आपके जो हाथ हैं ये न्याय के प्रतीक हैं, ये दंड भी देते हैं जो दुष्टता करता है, आपके जो चरण हैं वे करुणा के प्रतीक हैं, तो महाराज ये तो न्याय और करुणा का झगड़ा है, हाथ कहते हैं कांटे को निकाल करके बाहर कर दो जो चुभ रहे हैं, पैर कहता है जो आ गया मेरे पास उसको रहने ही दो ना, परे ही रहने दो ना, उसको निकाल करके दूर क्यों करते हो। तो महाराज मैं जान गई इस विवाद में किसकी जीत होगी, किसकी जीत होगी सीते, महाराज करुणा की ही जीत होगी, यहां पर न्याय नहीं जीत सकता है। और वे कांटे जो प्रभु के चरणों में चुभे थे सो चुभे ही रहे, वे निकलते ही नहीं है, वहां से निकले ही नहीं। जिस समय प्रभु का राज्याभिषेक होता है उस समय जब वेद आकर के प्रभु का वहां पर वंदन करते हैं, स्तुति उनकी करते हैं, ध्वज कुलेश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। वेद कह रहे हैं प्रभु आप इतने करुणाशील हैं कि वन पथ पर चलते चलते जो कांटे आपके पैरों में चुभे थे उनको भी आपने स्थान दिया है, वे अभी तक वहीं पर पड़े हुए हैं, वे कांटे दिखाई देते हैं, ये प्रभु हैं अत्यंत करुणा है जो कांटों को दूर नहीं करते। और इसीलिए कहा महाराज आप चल करके सुग्रीव को अभय दान दीजिए। और जब कह रहे हैं तो प्रभु से वे विनती करते हैं कि आप आइए ऊपर चलिए, शिवजी से मिलने के लिए बाद में किसी ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान जी आपने कैसी धृष्टता की, आपसे तो सुग्रीव जी ने कहा था कि शयन वहां पर कैसे जानी जी शयन बुझाई, इशारा कर देना था तो आप प्रभु को ले गए, ठीक है इशारा आप कर देते कि डरिए मत ये हमारे मित्र हैं, तो वहीं पर आप सुग्रीव को बुला लेते नीचे और आप प्रभु को ऊपर चढ़ा करके ले गए, ऐसा लगता है कि आपको धर्म का ठीक ज्ञान नहीं, आप ले गए प्रभु को, सुग्रीव को नीचे बुला लेना था। हनुमान जी ने कहा कि भाई देख लो, दो दृष्टियों से मैं प्रभु को ले गया ऊपर, क्या दो दृष्टि है, देखो ऐसा है कोई एक रोगी है, अब रोग इतना है कि वह चलने में सक्षम है, रोगी और वैद्य के पास चल करके चला जाए तब तो हम रोगी को ही ले जाते हैं वैद्य के पास, और इतना विकट रोगी हो कि चल न सके तब तो हम वैद्य और चिकित्सक को ही रोगी के पास बुलाते हैं, और सुग्रीव तो भव रोग के मारे वैदी ऐसे रोगी हैं, मैंने देखा कि वे चल करके प्रभु के पास तो नहीं जा सकते, तो मैंने फिर चिकित्सक से ही कहा कि महाराज वह रोगी तो आपके पास नहीं आ सकेगा, आप ही कृपा करके चलिए और चल करके आप उस रोगी को देख लीजिए, तो मैं समझता हूं कि मैंने कोई धर्म के विरुद्ध कार्य तो नहीं किया। और फिर देखिए दूसरी बात यह भी थी उसमें कि ऐसा है कि जीव प्रभु के पास आए तो कैसे आता है, तो जीव जब ऊपर जाता है तो प्रभु से मिलता है, अब मैं जीव से कहूं कि तुम प्रभु से मिलने के लिए नीचे आओ तो शास्त्र की मर्यादा ही खत्म हो जाती है कि जीव तो एक तो वैसे ही नीचे है और कितना नीचे जाएगा, वह तो नीचे ही स्तर पर पड़ा हुआ है, और मैं जीव को और नीचे आने के लिए कहूं कि तुम आकर के प्रभु से मिलो, प्रभु के दर्शन लो, तो यह शास्त्र की मर्यादा को काटना होगा। इन दोनों दृष्टियों से मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आप चलिए, रोगी है सुग्रीव, ये चल करके नहीं आ पाएंगे, आपको ही उन तक चलना पड़ेगा। और फिर मैंने उनसे यह भी कहा कि महाराज शास्त्र की मर्यादा खंडित होगी सुग्रीव के नीचे उतरने से, आप चलिए। और फिर पूछा जिज्ञासु ने कि मैंने तो देखा हनुमान जी, मैंने ऐसा सुना कि पहले तो प्रभु मानते नहीं थे, आपने शायद एक प्रस्ताव रखा था मेरे पीठ पर चढ़ जाइए। हाँ मैंने रखा था, कैसे रखा था, इसलिए रखा था कि प्रभु जो चढ़ते पहाड़ पर श्रम हल्का हो जाता, इतना श्रम में पैदल चलने का क्यों करते, इसीलिए मैंने कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, परंतु प्रभु राजी ही नहीं हो रहे थे। हाँ मैंने भी सुना था कि वे राजी नहीं हो रहे थे, फिर मालूम नहीं आपने कोई एक मंत्र प्रभु के कान में कह दिया और वे राजी हो गए, क्या यह सही है। कहा हनुमान जी ने हाँ बात तो सही है, प्रभु किसी प्रकार मेरी पीठ पर चढ़ने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, तब मैंने एक मंत्र उनके कान में कह दिया। वह क्या मंत्र था हनुमान जी, यदि आपको आपत्ति न हो तो बताएंगे। तो कहा हाँ मैंने प्रभु को देखा जिस समय कि वे राजी हो ही नहीं रहे हैं पीठ पर चढ़ने के लिए, और मुझे लगा कि प्रभु को चढ़ने में पर्वत चढ़ने में बहुत श्रम होगा, तो मैंने एक मंत्र कहा कान में, कहा कि देखिए प्रभु एक मंत्र मैंने जो ही कहा तो प्रभु तुरंत राजी हो गए, फिर पीठ पर चढ़ा करके मैं ले गया, वही तो पूछ रहा हूं हनुमान जी और आप वही मंत्र बताते नहीं है, तो मैंने तो पहले ही कहा है कि आपत्ति आपको न हो तो जरा वह मंत्र तो बता दीजिए कि प्रभु आपकी पीठ पर चढ़ने के लिए राजी हो गए। भाई बात यह है, मैंने प्रभु से कहा कि महाराज आप पैदल चल करके ऊपर जा तो सकते हैं, परंतु ऐसा कहा है शास्त्रों ने कि ईश्वर जीव से मिलने के लिए नीचे उतरता है और आप ऊपर जाएंगे, यह तो शास्त्र की बात कट जाएगी, शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध बात होगी, तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। प्रभु ने कहा तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाने से शास्त्र की कौन सी मर्यादा ठीक रहेगी। कहा कि महाराज आप मेरी पीठ पर चढ़ करके ऊपर जाएंगे, सुग्रीव जी आएंगे तो आप मेरी पीठ से नीचे उतरेंगे, तो शास्त्र की मर्यादा तो रक्षित हो गई कि जीव से मिलने के लिए ईश्वर नीचे उतरता है, यही तो मैंने कहा। और जब मैंने कहा तो प्रभु तुरंत राजी हो गए और उनको पीठ पर मैं उठा करके ले गया। यह हनुमान जी की अपनी बात, और जिस समय वे ले जाते हैं ऊपर ले जाते हैं और वहां पर परिचय कराते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार परिचय कराया, ईश्वर का जीव के साथ परिचय कराया, जीव का ईश्वर के साथ परिचय कराया, और परिचय करा करके तब हनुमंत कही उभय दिशी की कथा सुनाई। वे कहते हैं तब हनुमंत कही दिशी, जहां पर दोनों ओर की कथा वे सुना रहे हैं, एक ओर वे ईश्वर की कथा सुनाते हैं और दूसरी ओर जीव की कथा सुनाते हैं, और किसको साक्षी देते हैं, पावक को। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति ध्रुआई और प्रीति को दृढ़ बना देते हैं। पावक को साक्षी बना करके अग्नि को साक्षी बना करके वहां पर दोनों की जो प्रीति है उसको दृढ़ता प्रदान करते हैं। यह अद्भुत है। यह जो हनुमान जी हैं ईश्वर के पास जीव की कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि जीव आपके बिना तो वह पार हो ही नहीं सकता, आपकी कृपा का वह मोहताज है। और जब वे जीव के पास जाते हैं तो ऐसी कथा सुनाते हैं ईश्वर की कि जीव विकल हो जाता है ईश्वर से मिलने के लिए। अरे तू कहां भटक रहा है, ऐसे भटकेगा तो कभी भी तेरा निस्तार नहीं होगा, प्रभु के पास चल, वे तो कृपा सिंधु हैं, वे तो तुम्हें अपने पास रख लेंगे, तुम पर कृपा करेंगे। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कथा जीव को सुनाना और जीव की कथा ईश्वर को सुनाना। और अग्नि जब प्रज्वलित की जाती है, लक्ष्मण जी कहते हैं संबोधित करके, सुग्रीव को संबोधित करते हैं, सुग्रीव जी देखिए यह अग्नि और यह ईंधन लकड़ी, इन दोनों का जैसे मेल, इन दोनों के मेल से यह प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इसी प्रकार सुग्रीव जी आप प्रभु राम इन दोनों के मेल से इसी प्रकार के प्रकाश की उत्पत्ति हो और दोनों मिलकर के एक रूप आप लोग हो जाएं, बस यही इच्छा है। प्रभु हंसते हैं और हंस करके हनुमान जी की ओर देखते हैं और देख करके कहते हैं देखो हनुमान, लक्ष्मण अंततः तुम्हें भूल ही गए, यह तो कह रहे हैं कि लकड़ी है और अग्नि है, दोनों मिलकर के एक रूप हो गए। अगर अग्नि न हो तो लकड़ी में दाहिका शक्ति उत्पन्न न हो, और अगर लकड़ी न हो तब तो फिर यह अग्नि ही बुझ जाए। जैसे दोनों मिलकर के तेजस्विता की सृष्टि कर रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है, परंतु जानते हो हनुमान लक्ष्मण यह बात भूल रहे हैं कि बिना तुम्हारे, बिना पवन के यह अग्नि भी जल नहीं सकती है, इन दोनों के मिलने में यह पवन भी कारण है। यदि लकड़ी और अग्नि मिलकर के दोनों जलते हैं तो पवन की सहायता से ही जलते हैं, तुम ही सहायक बने हो, तुम्हारे ही कारण यह मैत्री सन्नद्ध हुई है, यह पुख्ता हुई है, यह दृढ़ हुई है। तो प्रभु जीव को भी और संत को भी, परम संत को भी जो गौरव प्रदान करते हैं यह अपने आप में विलक्षण है। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। यह अद्भुत कथा है हनुमान जी की कथा, परम संत की कथा। और कल जो कथा हम कहेंगे वह कथा होगी जब वे भक्ति की खोज के लिए जा रहे हैं और उस खोज में कैसी बाधाएं आती हैं, या हमारे अपने जीवन की बाधाएं, जो बाधाएं हनुमान जी के जीवन में आई वे मानो अपने जीवन के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं कि वे बाधाएं हमारे भी जीवन में आती। जब हम भक्ति की साधना में आगे चलते हैं ये कैसी विचित्र बाधाएं हैं जो आकर के हमें घेर लेती हैं और प्रभु के पास पहुंचने देना नहीं चाहती। और ये तो परम संत हैं, अपने जीवन के माध्यम से उपाय प्रदर्शित करते हैं, और केवल उपाय ही नहीं, जहां पर बाधाएं होती हैं प्रभु का आह्वान करते हैं, उनकी कृपा का आह्वान करते हैं, उन्हें बुला करके ले आते हैं और ला करके मानो हमारे जीवन में उसकी प्रतिष्ठा करा देते हैं उस भगवान की कृपा की। ऐसे विलक्षण परम संत हनुमंत जिनके जीवन में अपना कोई अभिमान नहीं, अपना कोई रूप नहीं, अपना कोई गुण नहीं, कहीं भी जाएंगे तो प्रभु की कथा ही कहेंगे। रावण ने पूछा कि सठ तेरा परिचय क्या, तो उन्होंने अपना परिचय तो नहीं दिया, कहां लंबा चौड़ा दिया, और फिर उसके बाद अंत में अपना परिचय देते हुए भी कैसा परिचय दिया, जहां पर यह कहा कि अरे रावण तूने इस ये सारे विश्व को, चराचर जगत को तूने जिसके बल के अत्यंत छोटे से हिस्से से तूने सारे संसार को जीत लिया है, दास दूत में जाकर हरियाणी होती है नारी, मैं उनका दूत हूं जिनकी नारी को तू चुरा करके ले आया है, पर वहां पर भी अपना नाम है। ये कहते हैं बंदर का नाम भी कोई नाम है, बंदर का रूप भी कोई रूप है, और इसीलिए विभीषण जी भी जब पहले परिचय पूछते हैं तो बताते ही नहीं है। वह कथा हम अंत में देखेंगे कि उन्होंने विभीषण को खींच करके कैसे प्रभु के पास तक पहुंचा दिया, और जो बाधाएं विभीषण के जीवन में आई उन बाधाओं को भी कैसे दूर किया, और दूसरी ओर प्रभु को भी मानो आकुलित कर दिया विभीषण से मिलने के लिए। यह हनुमान जी की कृपा, या हनुमान जी का उद्यम, या हनुमान जी की चेष्टा। तो आइए दोनों भगवान नाम संकीर्तन कर लें, आज की चर्चा को विराम दें।
भाई वसंत कुमार जी, स्वामी निखिलानंद जी। विशेष लोग और सज्जन परम संत हनुमंत पर आज तीसरी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। विषय में प्रवेश करने से पूर्व आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लें।
प्रभु अपने कर कमल के माध्यम से अपने
अपनी कृपा की छाया का विस्तार हनुमान जी के सिर पर करते हैं और यह भी कहते हैं कि हनुमान तुम जाना, सीता जी को तरह तरह से समझा देना।
बहु प्रकार सीता ही समझायो, कहीं बल बेग तुरत तुम ही आयो।
कहा कि तुम जाना, सीता जी को मेरे बल और विरह का परिचय देना। यह बड़ी विचित्र बात है, क्या सीता जी को भगवान श्री राम के बल का परिचय नहीं है? एक बार विरह का परिचय न भी हो सकता है, क्योंकि यह पहली बार है विरह, और इसलिए श्री राम सीता जी के विरह में कितने व्याकुल हैं, इस बात का अंदाजा सीता जी को नहीं भी लग सकता है। पर श्री राम का बल कितना है, क्या सीता जी इससे परिचित नहीं? जिस समय खरदूषण त्रिशिरा हम पढ़ते हैं 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के अकेले श्री राम पर आक्रमण करते हैं, सीता जी ने स्वयं देखा था कि श्री राम ने सभी को धराशायी कर दिया, तो बल का परिचय तो है। पर इतने दिनों तक सीता जी रावण के घर में बंदनी है और अभी तक श्री राम नहीं आए, संभवतः इसलिए सीता जी के हृदय में कहीं पर कुछ संशय न हो, इसलिए प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम मेरे बल का परिचय देना, विरह का परिचय देना, और बेबी तुम आए हो और जल्दी तुम लौट करके आ जाना। यह संदेशा और किसी वानर को देने के लिए तो नहीं कहा, यह हनुमान जी को ही चुना, और हनुमान जी भी यह मानते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं। चाहे वे सीता जी के पास हो, चाहे वे राम के पास हो, वे तो यही कहते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं। राम दूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब पहली बार वे वृक्ष से उतर करके मां के सामने खड़े होते हैं, यही कहते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं मां, मैंने कोई मायावी रूप धारण नहीं किया है, मैं श्री राम का दूत हूं। और फिर श्री राम का संदेशा भी तो देते हैं, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर भीर। या भी तो वे कहते हैं रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर भीर, और ऐसा कहकर के उनके विलोचन उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हनुमान जी भी अपना परिचय राम दूत के रूप में ही देते हैं। रावण से तो उन्होंने कहा ही था, जाके बल लवलेशते जित हुचराचर झारी, ताति दूत मैं जा करी हरि आने हूं प्रिय नारी। मैं उन्हीं का दूत जिनकी पत्नी को तू चुरा करके ले आया है, रे रावण तू मेरा परिचय पूछता है। हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया, केवल यही कहते हैं कि मैं उनका दूत हूं, और वहां पर जो श्री राम का परिचय दिया है, अद्भुत परिचय है कि जिनके इंगित मात्र से यह सारा ब्रह्मांड चलता है, जिनके बल का लवलेश पाकर के तू इतना मत्त हो रहा है, रे रावण मैं उन्हीं का दूत हूं और तेरे सम्मुख आज यहां पर खड़ा हूं। रावण को तो यही आश्चर्य होता है कि यह वानर बंधा हुआ है, मेरी सभा में आकर के इसे खड़ा कराया गया है, देवता मेरी तरफ आंखें नहीं फेर सकते हैं, सब सिर झुका करके खड़े हैं, और यह बंदर है जो बंधन में बंध करके भी सीना तान करके खड़ा है। कीधो श्रवण सुने से नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तोही। रावण को आश्चर्य होता है, शायद इस बंदर ने मेरा प्रताप नहीं सुना है, अपने मुंह से अपने प्रताप की बात कहता है। क्या तूने सुना नहीं है बंदर मैं कौन हूं? और कहता है, देखता हूं तू अत्यंत निशंक है, किसी प्रकार का डर नहीं है, तेरे पीछे किसका बल है?